मेरी रहती गीता तो नहीं। जब तक मेरे हाथ में शस्त्र है दुनिया में किसी की ताकत नहीं कि मुझे हरा दे। लेकिन भैया मैं ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय नहीं, तो क्षत्रियों की सी सहिष्णुता मुझ में नहीं। यदि कोई मुझे शोक का समाचार सुना दे उस अवस्था में मेरे हाथ में अगर शस्त्र गिर पड़ा तो कोई मेरा सिर काट ले। उपाय मिल गया ना, उपाय मिल गया। तीसरे में गए कृपाचार्य के पास, ये कुल गुरु, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया कि हम चले जाएंगे, हम युद्ध को छोड़ देंगे। चौथे में नाना शल्य थे, ये शल्य जो थे ये माद्री के सगे भाई थे, नकुल सहदेव के सगे मामा, और ये पांडवों की ओर आ रहे थे विशाल सेना लेकर के। दुर्योधन ने बड़ी चतुराई से सारी सेना का रास्ते भर स्वागत किया, खान पान की व्यवस्था की। ये बात जब शल्य को मालूम हुई तो शल्य उपकार में दब गए। ये किसी को वश में करना हो तो उसका उपाय उसकी सेवा करे, अयाचित सेवा करे, शत्रु वश में हो जाते। शत्रु है, शत्रु पक्ष में आ रहे थे शत्रु, तो जब उन्हें मालूम हुआ तो उन्होंने दुर्योधन से कह दिया कि भाई अच्छी बात है। पहुंचे वहां पर दुर्योधन जी आए, बोले मामा जी सब ठीक? बोले हाँ सब ठीक, रस्ते में तकलीफ तो नहीं हुई ना मामा जी? अब शल्य ने समझा कि कैसे पूछता था कि नहीं हुई। बोले क्यों, रस्ते का इंतजाम आपका था? बोले हाँ मामा जी आपका ही था। लेकिन सेना को डरा दिलवाओ, सेना उनकी हो गई। तो शल्य मामा को प्रणाम करने गए चौथे शल्य मामा। दुर्योधन ने जाकर ये धर्मराज ने जाकर प्रणाम किया, बोला तो वही आशीर्वाद बेटा तेरे जय हो। महाराज आपके रहते बोले तो नहीं आते तो नहीं हो, तुम आ गए तुम्हारी जय होगी, अब जय होगी। बोले आप फिर? बोले भाई हम जिस पक्ष में लड़ेंगे उस पक्ष से, इसमें बेईमानी करेंगे नहीं। तो बोले महाराज तुम्हारी सहायता करेंगे, सहायता ये करेंगे कि जब कर्ण सेनापति होंगे तो कर्ण को आवश्यकता होगी श्री कृष्ण के मुकाबले में घोड़ा हाँकने वाले सारथी की, क्योंकि कर्ण का प्रधान युद्ध होगा अर्जुन से। कर्ण ये प्रण कर चुके थे कि चार भाइयों को तो छोड़ देंगे और खास करके वो रखेंगे अर्जुन को ही प्रद्युम्न के रूप में। कहा तो ये था कि भाई अर्जुन अगर मुझे मार देगा, कुंती माता ने कहा अकेले में जाके कर्ण से कि बेटा तू मेरा बेटा है, तो कहा मैया तैने बड़ी भूल की, बेटा तो था तो तैने तो छोड़ दिया ना, मुझको जिसने पाला उसका मैं बेटा हो गया, और उसके बाद इस दुर्योधन ने मुझको भाई समझकर मेरी सहायता की, मुझे राजा बना दिया, उसका साथ में कैसे छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकता। तो बोले मेरे पांच कायम रहें, तो भगवान ये कर्ण ने कहा तेरे पांच कायम रहेंगे, चार को तो मैं मारूंगा नहीं, मेरे हाथ में भी आ जाएंगे तो छोड़ दूंगा। तो छोड़ा, कई बार छोड़ दिया, रहे अर्जुन और मैं दो, अर्जुन मुझे मार देगा तो मैं रह गया, तेरे पांच रह गया। अर्जुन को मैंने मार दिया तो मैं रह गया, तेरे पांच रह गए, और मुझको अर्जुन ने मार दिया तो तेरे पांच रह गए, पांच रहेंगे। तो शल्य ने कहा कि जब मैं कर्ण सेनापति होगा तो कर्ण के खास प्रतिद्वंदी होंगे अर्जुन, तो उस समय के युद्ध में सारथी का बड़ा महत्व था, सारथी बचा दे सारथी मरा दे, बाण आ रहा है सारथी शायद तत्कालियों कर दे, निकल गया बाण ऊपर से सारथी के हाथ में सब कुछ। तो बोले शल्य थे इस कला में निपुण, तो शल्य ने कहा कि जब कर्ण सेनापति होंगे तो कृष्ण के मुकाबले में सारथी की आवश्यकता होगी, और उनके मुकाबले में ठहरने वाला मेरे सिवा कोई है नहीं इस कला को जानने वाला, तो मेरी उस समय पूछ होगी, उस समय तुम्हारी सहायता करूंगा। तो हो गई बात, जब ये कर्ण सेनापति हुए तो कर्ण ने कहा दुर्योधन से कि हमको यह फेंकने वाला चाहिए कृष्ण के मुकाबले में। बोले कौन आए कौन है? बोले एक शल्य है। बोले शल्य से कैसे कहें, तो बराबर का राजा रथानी कैसे कहें, बोले इसके बिना काम नहीं चलेगा। दुर्योधन बेचारे गए, हाथ हाथ जोड़ करके बड़ी विनयपूर्वक बोले महाराज ये काम से आए, अब आपसे कहना नहीं चाहिए, आप बड़े हैं, लेकिन काम अटक गया, आपको सहायता करनी पड़ेगी। हमारे कर्ण जी सेनापति हुए, उनको रखा करने वाला नहीं, आप ये दया करें, कृपा करें किसी प्रकार। तो सभी ने कहा कर देंगे हम काम, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम उस समय कर्ण से कुछ भी कहें, कर्ण उसका प्रतिकार न करे, बोले नहीं, कुछ एक्शन न ले, क्रिया न करे, तब हम करें। दुर्योधन आए कर्ण के पास, बोले वो तैयार तो हो गया पर शर्त ये करता है, बोले कुछ भी शर्त करे मंजूर करो। शर्त मंजूर कर ली, कर्ण सेनापति और स्थल सारथी, जब सेनापति को लेकर के स्थल ने रखा था, तो शल्य बोला कर तू जाता युद्ध करने, अर्जुन से बोले हाँ, बोले डूब जा चुन्नी भर पानी में जाके मर जा, डूब जा, अरे कहीं सिंह के सामने सियार जाता युद्ध कर रहे थे, कहा अर्जुन और कहा तू सूत पुत्र, ज्यादा लड़ाई करने शर्म नहीं आती। अब बार बार कायर कहे, कायर कहे, और न मालूम क्या क्या कहे, ये मॉरल गिर गया। ये मॉरल गिरने पर बात आई, मॉरल गिर गया, तो जब समाज का मॉरल गिर जाता है ना, तो आज के समाज की दशा ये है महाराज कि भगवान पर विश्वास उठ गया, इसलिए आज किसको बुरा कौन कहे, समाज में तब बुरा कोई किसी कहता है जब बुरे कम होते हैं और अच्छे ज्यादा होते हैं, तब तो बुरों को समाज से निकालने की बात आती है, बुरों का बहिष्कार आता है, बुरों को शर्म आती है कि लोग हमारे पांच भाई क्या कहेंगे। अब पांचों भाई का पीठ ठोकर, बोलिए तो हमारा गौरव है, इसी ने तो इसी को इसने समाज का सिर ऊंचा किया, तब फिर क्या है। तो ऐसी अवस्था में भगवान पर विश्वास होना कठिन, तो भगवान की कृपा को मानने वाला पाप नहीं करेगा, भगवान पर विश्वास, भगवान की सत्ता मानने वाला पाप नहीं करेगा, और भगवान की कृपा जो मानेगा उसको तो हर जगह एक बात दिखेगी, बड़ी मंगलमयी बात है, भगवान के बिना कुछ हो नहीं सकता, और भगवान अमंगल कर नहीं सकते, क्योंकि भगवान मंगलमय हैं। तो हमारे लिए जो कुछ भी अच्छे बुरे फल का निर्माण होता है वो मंगलमय भगवान के मंगल विधान से होता है, चाहे वो देखने में कितना ही विपरीत लगे, कटु हो, प्रतिकूल हो, पर वो मंगलमय भगवान के विधान से हुआ है। तो जैसे अमृत से कोई मरता नहीं, ऐसे भगवान के मंगल विधान से किसी का अमंगल होता नहीं, तो ये विश्वास रहेगा। ये विश्वास जहां पर है वहां मिथ्या मंगल की कल्पना से आदमी पाप क्यों करेगा, मिथ्या मंगल की धारणा से शास्त्र विरुद्ध भगवत विरुद्ध आचरण क्यों करेगा, तो करता है। तो विश्वास नहीं, विश्वास बिना कृपा की अनुभूति नहीं, और कृपा की अनुभूति बिना भगवान से भगवान को प्राप्त करने की चाह ही नहीं होती। भगवान की चाह के लिए कृपा आवश्यक, और कृपा की अनुभूति के लिए विश्वास आवश्यक। तो विश्वास पैदा करने के लिए विश्वासी पुरुषों का, विश्वास भरी वाणी का संग करे, आज का युग इसके विपरीत। तो आज क्या हो रहा है कि नास्तिकता बढ़ रही है। नास्तिकता का अर्थ यही कि भगवान में अविश्वास बढ़ रहा है और पाप में विश्वास बढ़ रहा है। जो जमाना मीमांसा युग का था, कर्मकांड का था, उसमें पाप पर विश्वास नहीं था, देवाराधन पर विश्वास, कि देवता का यज्ञ करने से नवीन प्रारब्ध का निर्माण होगा। पांच विश्वास होते हैं, पांच विश्वास होते हैं, एक होता है भगवान पर विश्वास, एक होता है धर्म पर विश्वास, अच्छे कर्म पर विश्वास, एक होता है देवता पर विश्वास, एक होता है मनुष्य पर विश्वास, और एक होता है पाप पर विश्वास। तो पाप पर विश्वास वाला आदमी जो है वो तो हमेशा सोचेगा यही कि ये छल से, कपट से, दंभ से, चोरी से, खून से, डाके से, झूठ से, कपट से अपना काम बनाना है, ये तो मनुष्य नहीं रहेगा, राक्षस बन जाएगा। इससे ऊंचा जो आएगी उसका विश्वास बात पर तो नहीं है, पर वो मनुष्यों को खुश करना चाहेगा। अमुक मिनिस्टर हैं, अमुक बड़े आदमी हैं, अमुक पैसे वाले हैं, अमुक मिल ऑनर हैं, ये लोग अगर कृपा कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये इससे ऊंचा और बड़ा निर्देश कार्य जो है वो है देवता पर विश्वास। कांक्षंत कर्म नाम सिद्धम यजंत यह देवता क्षिप्रम मानुषे लोक सिद्धिर भवतु कर्मजा। ये भगवान ने गीता में कहा कि देवता देवाराधन जो है इससे बहुत जल्दी नवीन प्रारब्ध का निर्माण होकर और सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें श्रद्धा होगी। इससे ऊंचा जो है वो है पुण्य पर विश्वास, धर्म पर विश्वास। धर्म करो, पुण्य करो, अपने आप लाभ होगा, पुण्य का फल बुरा हो नहीं सकता। धर्म पर विश्वास, धर्म छोड़ेंगे नहीं चाहे मर जाए, पैसा आए ना आए कोई मतलब नहीं, प्राण रहे न रहे कोई मतलब नहीं, अपने को जो धर्म की टेक है ये नहीं छोड़नी है। राणा प्रताप का उदाहरण सामने, हाल में ही धर्म नहीं छोड़ना है चाहे सब कुछ चला जाए। तो धर्म पर विश्वास तो सबसे ऊंचा है, भगवान पर विश्वास। भगवान मंगलमय जो करते हैं, तो जब समाज का स्तर गिरता है ना तो भगवान धर्म का विश्वास तो हटता है और मनुष्य का और पाप का विश्वास बढ़ता है। भाई अमुक आदमी को मनाओ, उसको ठीक करो, उस अधिकारी को हाथ में रखो तब काम बनेगा, और उसको हाथ में रखने के लिए अगर बुरा काम करना पड़े तो अपने को काम बनाना है ना भाई, अपने कोई बुरा काम थोड़ी करना है, अपने को बोले किसी पशु को खाने के लिए थोड़ी मारना है, देवता के राज्य के लिए बलि देना है। ये मनुष्य अपने आप युक्तिवाद के द्वारा अपने पाप का समर्थन करता है, बोले भाई ये तुम कर्तव्य के लिए करते हैं, हमारा स्वार्थ थोड़ी है। इस प्रकार की कर्तव्य की नीति की युक्तियां अपने पाप के समर्थन में मनुष्य देता है और पाप करता है। समाज का मॉरल गिरा कब मानना चाहिए, जब समाज का पाप में विश्वास हो जाए। हमारे यहाँ एक कलेक्टर रहे, वो सूरतमणि नारायण त्रिपाठी, अब वो दूसरे विभाग में हैं। उन्होंने एक बात हमसे कही बड़ी अच्छी लगी हमको, उन्होंने कहा कि भाई जी पाप पहले भी होते थे, गिरते थे आदमी, भूल होती थी, पर पाप करने वाला भी पाप करके पश्चाताप करता था, और उसके मित्र बांधव घर वाले समाज वाले भी कहते थे कि भैया तुमने भूल की, ऐसा काम अपने नहीं करना चाहिए था। तो वो शर्मिंदा होता, पश्चाताप करता और फिर वैसे काम से बचना चाहता। आज तो समाज पीठ ठोकता है, समाज शाबाशी देता है, समाज कहता है तुम बड़े चतुर हो, बड़े होशियार हो। तो ये मॉरल गिरे हुए समाज का ये चिन्ह होता है कि जहाँ भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान की कृपा का जरा सा भरोसा नहीं और पाप का भरोसा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये है, बोले भाई बात आप कहते हो बिल्कुल ठीक, लेकिन ये हम कर देंगे ऐसा तो हमारा काम चलेगा कैसे। हमारे पास एक चिट्ठी आई महाराज गत वर्ष के बाद, उसके पहले एक कोई फर्म है जो ब्राह्मी आंवला तेल बेचता, कोई कहीं है, ऐसे कई फर्म है, इसलिए किसी पर संदेह नहीं करना चाहिए आपको कि अमुक के लिए ये कह रहा है, सब बेचारे बहुत अच्छे होंगे। उन्होंने पत्र भी अच्छे भाव से लिखा, उन्होंने ये लिखा कि हम ब्राह्मी आंवला तेल बेचते, लेबल पर ब्राह्मी आंवला रहता है और खुद दिखता है, पर उस तेल में न ब्राह्मी है न आंवला है। अब यदि हम नहीं बेचते हैं उस तेल को तो कंपटीशन में हम ठहरते नहीं, हमारी आमदनी बंद हो जाती है, घर में हमारे 50 आदमी, अब हमारा काम कैसे चले। कल्याण की बात हम मान लें और रोजगार बंद कर दें तो काम चले कैसे, और करते रहे तो आप कहते हैं पाप है, ये चीज़ क्या हम क्या करें। कि संदेह हुआ, ये संदेह क्यों हुआ? उनकी उनके सरलता के लिए धन्यवाद है, उनके अंदर बात तो आई ना, पर ये बात क्यों हुई? इसलिए हुई कि पाप किए बिना काम चलेगा नहीं, पाप पर विश्वास। इसी प्रकार जब मनुष्य पाप पर, बुरे कर्म पर विश्वास करता है, तब वो भले की तरफ जाएगा कैसे? भगवान की कृपा पर विश्वास करेगा कैसे? और कृपा पर विश्वास किए बिना ये मनुष्य आगे बढ़ सकता नहीं। तो इसीलिए नास्तिक वैरी धन का चिंतन न करके विश्वासी भक्त प्रेमी भगवान को मानने डरने वाले ऐसे लोगों का, ऐसे साहित्य का, ऐसे विचारों का, ऐसे स्थान का, ऐसे खान पान का संग करना चाहिए जिससे बुद्धि में भगवान पर विश्वास बढ़े और पाप पर विश्वास घटे। भगवान पर विश्वास हुए बिना चाह नहीं होगी, और चाह हुए बिना, और उसमें दूसरी बात एक और होगी, ये क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक चीज़ है। जिस संघ में हम रहते हैं ना, जो चीज़ बराबर देख सुनते हैं उसी प्रकार का हमारा मन बनता रहता है। हम बेईमानी नहीं करते जानकर, हमारा मन हमें सुझाता वो चीज़ की चीज़ ऐसी, हमारा मन वैसा बन जाता है। हम लोगों से कहते हैं कि भाई हम जरा भी बेईमानी नहीं करना चाहते, पर मन बताता है कि भाई ये तो ठीक तुम कर रहे हो। तो पाप में समीचीन बुद्धि, बुरे में भली बुद्धि मनुष्य की हो जाती है बुरे संग से, और भली बुद्धि हो जाने के बाद उसको वो छोड़ना नहीं चाहता, उसको वो छोड़ सकता नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि कहती है कि ये ठीक है, तुम जो कर रहे हो यही उचित है, ये करना चाहिए। युक्ति देता है, बोले सब करते हैं ना, उसने किया, क्या तुम उनसे अधिक बुद्धिमान आ गए? क्या तुम उनसे अधिक धर्मात्मा आ गए? तुम्हारे बच्चे भूखे मरेंगे कल, तो तब तुम क्या करोगे? फिर करोगे कि नहीं? इस प्रकार से उसका मॉरल और भी गिरता है। तो समाज की जब दशा होती है, तब ये सलाहकार ऐसे मिलते हैं, ग्रंथ ऐसे मिलते हैं, साहित्य ऐसा मिलता है। तो इसलिए इससे आदमी बचे जहां तक बने। ये नारद जी ने कहा कि और चीज चाहे हो भी, पर दुस्संग सर्वथैव त्याज्य है। बरु बल बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देहता। नरक में रहना अच्छा, नरक में रहने से नरक की पीड़ा का भोग तो होगा, पर एक बड़े दुष्कर्म का ऋण तो उतरेगा ना। वहाँ कर्म का भोग है नरक की पीड़ा के द्वारा, और बुरे संग में नरक की पीड़ा देने वाले कर्मों का निर्माण है। न मालूम कितनी नरक की पीड़ा बुरा संग बना देगा। तो नरक में गर्म रहना अच्छा, पर बुरे संग में किसी लाभ की आशा से भी नहीं रहना चाहिए। और सलाह तो दी नहीं जाती ना, बहुत लोग पूछते हैं क्या करें, संग छोड़ दें, काम छोड़ दें। अब कहने से ही छोड़ेंगे नहीं, तुमसे ही कहा जाता है तुम अपनी प्रसिद्धि, काम तो बुरा है, तुम अपनी प्रसिद्धि देख कर जैसा ठीक हो वैसा करो। मतलब इसका यह है कि मनुष्य के मन में जब इस प्रकार का विश्वास हो जाता है बुराई पर, तो भलाई की बात वो सुनना नहीं चाहता। तो ये बुरा संग, इस अविश्वासियों का संग, ये नास्तिकों का संग है। वेद निंदक नास्तिक माना, धर्म न मानने वाला नास्तिक माना, तो सबसे बड़ा नास्तिक तो वो है जिसका असत कर्म में विश्वास और सत कर्म में विश्वास नहीं, जिसका बुरे कर्म में विश्वास और भले कर्म में विश्वास नहीं। तो उसका विश्वास उसके अंदर भगवान की चाह नहीं पैदा करने देगा। भोग की चाह, देखो ना, वो सुखी हो गया, वो सुखी हो गया, वो डकैत, वो फिर डकैतों को देखेगा। तो समाज जो है वो डकैतों का समाज बन जाएगा। आज का समाज जो हमारा है, इसको अगर हम कहें तो सिविलाइज डकैत हैं सब, सभ्यता का डाका डालने वाले हम सब हैं। ये धर्म की दुकान वाले भी, व्यापार की दुकान वाले भी, राज की दुकान वाले भी, और 100 में 2-4 अच्छे हुए तो क्या हुआ, कोई होंगे। लेकिन ये बात क्यों कैसी चुके हो गई है, इसलिए हो गई कि भगवान पर विश्वास हमारा हटने लगा, नास्तिकता आ गई। इस नास्तिकता को दूर करने के लिए 2 चीज करनी है। जेवर विश्वासी है उनको तो अपने विश्वास को और भी दृढ़ करना है, और किसी भी हालत में विश्वास को छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही विपरीत समय आ जाए, आंधी आवे, तूफान आवे, वज्रपात हो, तमाम दुख चारों ओर से आकर के घेर ले, और वो यही कहे कि हम नहीं छोड़ेंगे। निंदन पुनीत निपुणा यदि वास्तवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छत वा यथेष्टम अद्यवा मरणमस्तु युगांतरेवा न्यायात पथ प्रविचलंति पदम न धीरा। भाई चाहे नीति निपुण मामूली आदमी नहीं, सारे समाज के देश के नीति विशारद लोग, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग कहें कि बड़ा बुरा आदमी है, और वे लोग कहें कि बड़ा अच्छा आदमी है, स्तुति निंदा नीति निपुणों के द्वारा, चाहे वो रुक्य रहे स्तुति हो चाहे निंदा। पर लक्ष्मी देवी आ जाए या जहां मन हो वहां चली जाए, गच्छत वा यथेष्टम, जब मन हो जहां मन वहां चली जाए, जब चाहे तब चली जाए, और अद्य युवा मरण मस्त युवान्तर, आज मौत आ जाए या युगों के बाद आवे, तो जो धीर पुरुष हैं वो न्यायात पथ प्रविचलन्ति न, वो न्याय के मार्ग से कभी एक पैंड भी हटते नहीं। चंद्र तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, तय दृढ़ श्री हरिचंद को तरे न सत्य विचार। चंद तरे सूरज तरे, तरे जगत व्यवहार, चंद्रमा हट जाए अपने मार्ग से, सूरज हट जाए, लेकिन वो जो सत्य विचार वाला हरिश्चंद्र है वो अपने को नहीं टालता, नहीं हटता वहां से। तो ये जो चीज है वो तो दृढ़ रहे, और अपने इस चीज को वो फैलावे, केवल वाणी से नहीं विश्वास से फैलावे, लोग देख लें उसके चमत्कार को, इसके विश्वास से इसका काम बन गया। पर महाराज होता है, विश्वासी आदमी को भगवान कितना बचाते हैं। अभी एक हाल की घटना, कोई मोटर कहीं जा रही थी, कहीं से आई कहीं जा रही थी, एक लड़की थी उसमें, मोटर वाले के मन में गहने का लोभ हो गया। रास्ते में रात को 2-2:30 बजे उसने मोटर रोक के गहना फिरवा लिया जंगल में। वो जिसकी लड़की थी वो बड़े विश्वासी है, भगवान पर बड़ा विश्वास करते, संतों के सेवक। घटना क्या होती है कि वो गहना उतरवाता है, लड़की का मुंह बंद किए हुए है जिसमें चिल्लाए नहीं, इतने में ट्रक आ जाते हैं। रात को 2:30 बजे जंगल में ट्रक पहुंच जाती है, तो ट्रक वाले भी जैसे तैसे आदमी होते हैं, ट्रक को देख करके उस आदमी की हिम्मत जरा शिथिल पड़ जाती है, वो लड़की को छोड़ देता है। तो लड़की में साहस क्या आता है, वो चश करके बाहर आ जाती है, और तो ट्रक के सामने खड़ी होकर पुकारने लगती है कि मुझे मारते हैं बचाओ। ट्रक वाला ट्रक रोक लेता है, उसको बैठा के थाने में ले जाता है, तो पीछे से रिपोर्ट करने वो भी जाता है कि लड़की को ट्रक वाला भगा ले गया। वहीं वो पकड़ा जाता है लड़के के बयान पर। अब वो ड्राइवर हवालात में भी है, ये अभी हाल की घटना है। किसने बचाया उसको 2:30 बजे रात को? अगर वो 8 घंटे पहले ट्रक पास हो जाती वहां से और 10 मिनट के बाद पास होती तो क्या वो लड़की बच सकती? तो ठीक है, मौके पर घटना तो अब होने वाली है, और वो ट्रक उससे पहले चल चुकी। एक हमारे कलकत्ते में थे कैलाश चंद्र बोस, डॉक्टर रहे वहां के बहुत बड़े, उनकी माँ बीमार, ये घटना कुछ 60 वर्ष पहले की, माँ बीमार। तो उस समय कलकत्ते बंबई में 4 दिन लगते थे ट्रेन में, और हवाई जहाज वहाज था नहीं कुछ, और चीजें आसपास की बहुत कम मिलती थी, तो वहां अंजीर नहीं मिलते थे कलकत्ते में। तो कैलाश बाबू की माँ बीमार, और कैलाश बाबू ने देखा कि माँ मरने वाली है, तो शाम का वक्त कैलाश बाबू गए माँ के पास। बोले माँ, तुम्हारे मन में कोई बात है तो कह दो, समझते हो जो कुछ कह दे। तो उसने कहा, बेटा तुमने एक दिन अंजीर खिलाया था हमको, और हमारे अंजीर के मन में आ रही, अंजीर खिला दो। अब कैलाश बाबू घर में तो अंजीर था नहीं, तमाम बाजार में आदमी भेज दिया, 1000 रुपया लगे, 2000 रुपया मेरे अंजीर मिल जाए, पर बाजार में ये था ही नहीं उस जमाने में, आता कहां से अंजीर नहीं। तो कैलाश बाबू कही हुई बात है कि हम उदास हो, कि देखो हम समर्थ बेटे हैं, पैसा हमारे पास है, और माँ मर रही है, पर माँ को एक अंजीर खिलाने के हम के लायक हम नहीं, हे भगवान क्या करें, दुखी हो गए। तो बोले रात को 11 बजे किसी ने आके किवाड़ खड़काया, आवाज आई। तो बोले हमने समझा कि कोई रोगी के यहाँ से बुलावा आया है, तो माँ मरना सन अंजीर मिला नहीं, हम दुखी रहे। तुमने कहा नहीं आएंगे, अभी नहीं आते, भी नहीं किवाड़ खोलते। उसने कहा कि मैं बुलाने नहीं आया, मैं तो दूसरे काम आया हूँ, हमारे मालिक ने चीज भेजी है। तो बोले मैंने किवाड़ खोले तो देखता हूँ कि अंजीर का टोकरा लिए जमादार खड़ा है। उसने वो कोई भाटिया से गुजराती त्रिभुवनदास हीराचंदिया, क्या उनके फर्म का नाम था, कलकत्ते में उनके मालिक आए थे, उसी समय बंबई से पहुंचे थे, और सवेरे वो जाने वाले थे रंगीन। उन्होंने आदमी से कहा कि तुम अभी जा कर के कैलाश बाबू को दे आओ, कह देना कि सवेरे वो रंगीन जाएंगे, आपसे मिल नहीं सके, इसलिए लेके अभी आ गया। तो कैलाश बाबू ने कहा कि हम उछल पड़े। हमने कहा भाई कोई भगवान है तो सही, कोई है तो सही, माँ को अंजीर की आवश्यकता आज हुई, पर हमारे मन में आ जाई, पर भेजने वाले ने 4 दिन पहले भेज दिया वहां से, नहीं तो पहुंचता कैसे आज। 4 दिन पहले अगर इसकी व्यवस्था न हुई होती तो कैसे होता, बाण चला, कर्ण ने बाण चलाया, और बाण में वो विष का भजाया हुआ बाण अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर एक नाग आके बैठ गया, अर्जुन का बैरी, बाण लगे अर्जुन मर जाएगा। अर्जुन को मालूम नहीं कि ये चीज हो रही है, पर जिसके रक्षा में उसे मालूम। उधर से बाण छूटा, इधर से घुटनों का बल, यहां हाथ का बल लगाया, घोड़ों के घुटने टिक गए जमीन पर, रथ के चक्के जमीन में धंस गए,